प्रभावित होना पराधीनता है। हम सभी का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। फरिश्ता अर्थात फरिश्ता अर्थात फर्श, लेकिन वज्र के तरह कठोर भी हैं। तो द्वापर से हम माया के जेल में रहे, और अभी अगर व्यक्ति वैभव के तरफ आकर्षण है तो माया के जाल में रहे। तो ये भी संगम युग में भाग्य की विडंबना ही कहेंगे। दूसरा, किसी के गुण को विशेषता को प्रभावित देखकर प्रभावित होना, ये भी यथार्थ नहीं है। किसी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है तो वो प्रभाव जरूर डालता है, लेकिन हमें ये सोचना है ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी परमात्मा की देन है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो सुंदर रचना को देखकर उसमें हमें फंसना नहीं है, लेकिन उस रचयिता को हमें देखना है। वस्तु से प्रभावित होना भी ना समझी है। इस संसार के पदार्थ नाशवान हैं, अक्षण भंगुर हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे पदार्थों में रमण नहीं करता है, ऐसे पदार्थों से आसक्ति रखना, लोभ रखने से हमें दुख की प्राप्ति होती है, और ऐसे पदार्थों से प्रभावित होने से हमारा मन उनका गुलाम बन जाता है। मृत्यु के क्षणों में सारे संसार का धन आपके सामने हो तो भी वो किस काम का। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो सारे संसार के जगत के रिश्ते नाते छोड़ देते हैं। इसलिए हमें पुरुषार्थ करते करते अपने कदम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते रहना है। प्रभावित होने से बड़ा भारी नुकसान हमें होता है, क्योंकि मनुष्य का ये नेचर है, वो आनंदमय रहता है, उन्नतिशील रहता है, शांत रहता है, लेकिन जब वो प्रभावित होता है तो परतंत्रता में अनुभव होता है, और जब वो परतंत्र होता है तो मन उसका गुलाम बन जाता है और उसको बड़ा भारी नुकसान होता है। चार प्रकार के नुकसान प्रभावित होने से होते हैं। पहला नुकसान है, प्रभावित होने वाला व्यक्ति वशीभूत होकर रहता है। किसी का प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व देखकर उस पर प्रभावित होता है तो उसकी बुद्धि उसमें फंस जाती है, और जब वो उससे के बारे में सोचता रहता है उसके वो वश हो जाता है, जैसे पिंजड़े का वो पंछी बन जाता है। पिंजड़े के पंछी को देखकर बहुत दया आती है, इतनी ऊंची उड़ान उड़ने वाला पंछी इस छोटे से पिंजड़े में जकड़ा हुआ है। तो वो खिलौने की जो चिड़िया नाचती रहती है, ऐसा वो कठपुतली बनकर नाचता रहता है, वशीभूत होकर रहता है। तो ऐसा वशीभूत व्यक्ति कभी भी आजादी अनुभव नहीं कर सकता है। गुलामी हमने इतने वर्षों तक सहन की, माया की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, अब संगम युग में हमें आजादी अनुभव करना है। आ जा दी अर्थात जब चाहे मैं आत्मा पंछी इस पिंजड़े में आ जाऊं और जब चाहे इस पिंजड़े से ऊपर उड़ता रहूं, उड़ान का आनंद लेता रहूं, ऐसी आजादी मुझे अनुभव करना है। दूसरा नुकसान, प्रभावित होने वाली व्यक्ति की उन्नति सीमित रहती है। इतिहास कहता है इस संसार में एक से एक बढ़कर महान हस्तियां हुई जिन्होंने संसार को चकित किया है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रभाव पड़ना इस मामूली बात है, लेकिन जब हम ऐसे व्यक्ति पर प्रभावित होते हैं तो उनके जैसा बनने की अभिलाषा मन में रखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए तो इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, सीमित उन्नति वाले ही हैं। परमात्मा ही एक हैं जो असीमित है। तो इसलिए प्रभावित होने वालों की उन्नति सीमित रहती है, दायरे में उचित दायरे तक ही वो रहती है। तीसरा नुकसान, प्रभावित होने वाला व्यक्ति परमात्मा की मदद से वंचित रहता है। हर इंसान चाहता है मेरा मान हो, मेरी शान हो, मेरी महिमा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, उसके लिए वो बहुत प्रयास करता है। लेकिन प्रयास करते करते जब वो स्वयं को असमर्थ समझता है तो किसी न किसी आत्मा का वो सहारा लेता है, मदद लेता है और आत्मा पर निर्भर रहता है। तो जो किसी व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, परमात्मा उनको मदद नहीं करते हैं। जो स्वावलंबी होते हैं, जो आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हों को परमात्मा की मदद स्वतः ही मिलती है। तो दूसरों की मदद लेना, दूसरों की मदद पर निर्भर रहना, ये मन की दुर्बल वृत्ति है। इसलिए हमें आत्मनिर्भर रहना है। जिसकी कोई भी मदद नहीं करता है उसकी मदद करने के लिए परमात्मा दौड़े दौड़े आते हैं। तो ऐसे पराधीन आत्माएं परमात्मा की मदद से वंचित रहते हैं। चौथा नुकसान, पराधीन होने वालों को कलप कलप की जो कमाई होती है अविनाशी, उसमें घाटा पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का अंतकरण स्नेह से मोह ममता से भरपूर रहता है। जब कभी किसी से स्नेह मिलता है वो प्रभावित हो जाता है, लट्टू हो जाता है और उसको अपने व्यक्ति को मन मंदिर में बिठा देता है। मन मंदिर में हमें परमात्मा को बिठाना है, जो हमें संगम योगी अविनाशी खजाने देते हैं, सारे कल्प के लिए खजानों से माला माल करते हैं, उनको हमने मन मंदिर में बिठाना है। लेकिन किसी व्यक्ति पर प्रभावित होकर उसको मन मंदिर में बिठाते हैं तो परमात्मा की विस्मृति हो जाती है और परिणाम स्वरूप कल्प कल्प की जो हमारी कमाई होती है उसमें घाटा पड़ता है। इसलिए कहते हैं जिसके मन में न होता दूजा उसकी ही होती है पूजा। जिसके मन में न होता दूजा उसकी ही होती है पूजा। बाबा कहते हैं आपके तीसरे नेत्र में आपके साथ मैं बैठता हूं, लेकिन तीसरे को अगर बिठा दिया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देगा। इसलिए अपने दिल रूपी तख्त पर केवल बाबा को बिठाना है, किसी व्यक्ति वैभव को नहीं बिठाना है, वरना कल्प कल्प की जो अविनाशी होने वाली कमाई है उससे हम वंचित रह सकते हैं। प्रभावित होने वाले प्रभावशाली नहीं बन सकते हैं। हर कोई चाहता है मेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, चुंबकीय व्यक्तित्व हो, इंस्पायरेबल पर्सनालिटी हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, तो ऐसे प्रभावित होने वाले कभी भी प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो पराधीन होता है वो गुलाम होता है, वो अधीन होता है, और अधीनता वाला व्यक्ति अपने मन में श्रेष्ठ चिंतन सदा नहीं चला सकता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो, महान हो, सकारात्मक हो, शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह मन में चलता हो। लेकिन पराधीन होने वाला व्यक्ति हमेशा निर्बल होने के कारण, अधीन होने के कारण ऐसा श्रेष्ठ चिंतन नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं बना सकता है। इसलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने वाले अभिलाषाओं को, इच्छित व्यक्तियों को इस प्रभावित होने के बीमारी से मुक्त रहना बहुत जरूरी है। परमात्मा का प्रभाव अपरिमित है। सत्यम शिवम सुंदरम इस संसार में एक का ही गायन है। उनका रूप इतना सुंदर है, सबसे सुंदर है, सबसे तेजोमय है, परम मनोहारी है, परम सुंदर है, परम कल्याणकारी हैं, तो ऐसे बाबा को ही हमें अपने दिल में बिठाना होगा, क्योंकि वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे शुभचिंतक हैं, वही हमारे पालनहार हैं, वही हमारे जीवन का आधार हैं। इस संसार में सबसे शुभचिंतक चाहने वाला मेरा वो एक ही परमात्मा है। इसलिए कल्याण इसी बात में है कि उस परम सुंदर परमात्मा को ही अपने मन में बिठा दें और उनके प्रभाव में ही सदा रहें, क्योंकि इस संसार में दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति वैभव विनाशी चीजें, ईश्वर अर्थात अविनाशी परम आत्मा। तो सारे कल्प में हम नश्वर के पीछे ही भागते रहे। अभी संगम युग में हमें ईश्वर की आराधना करनी है। संगम अर्थात परमात्मा के संग में रहना। सारे कल्प में हम आत्माओं के साथ रहें और सतयुग से लेकर और रहेंगे, लेकिन केवल संगम युग में ही हमें परमात्मा के साथ रहने का गोल्डन चांस मिलता है। लेकिन द्वापर युग से हमारा बहुत पक्का संस्कार बन चुका है, प्रभावित होना और प्रभावित करना, आकर्षित होना और आकर्षित करना, ये देह भान के कारण। अभी इस संस्कार को हमें जड़ से खत्म करना होगा। उसके लिए बाबा को अपने दिल में स्थान देना है। मैं अपना दिल तक उस परम पिता को दे चुकी हूं, उस सलोने साजन को दे चुकी हूं, मेरे दिल रूपी तख्त पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, केवल उस एक पिता परमात्मा को ही है। तो संगम की ये जो सुहावनी घड़ियां हैं, ये हमारे हाथ से निकल न जाएं, क्योंकि ऐसी सुहानी घड़ियां मुश्किल से हमें संगम युग में मिलती हैं। ये ड्रामा हर पल हर घड़ी शूटिंग कर रहा है, शूटिंग हो रही है। आपके मन में कौन रहता है उसकी फोटो हर पल ये ड्रामा लेता रहता है। शादी का लोग शादी का एल्बम बड़े खुशी से किसी को दिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं आत्मा अपनी स्थिति का एल्बम किसी को दिखाऊं तो देखो मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। ऐसे सुंदर फोटो मेरे एल्बम में ही बहुत है। तो इस संगम योगी जीवन में सबसे खुशनुमी घड़ियां कौन सी हैं, गोल्डन मोमेंट्स कौन सी हैं, जब मैं आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करती हूं, ये पल मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल हैं। तो इसके लिए हमें चेक करना है, कहीं मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति के तरफ या वस्तु के तरफ बार बार भागती तो नहीं है? अगर भागती है तो उसको हमें चेक करना है। क्या होता है, सबसे पहले किसी की विशेषता हमें अच्छी लगती है तो बुद्धि का लगाव होता है, फिर झुकाव हो जाता है, फिर बाद में उसमें हमारी बुद्धि फंस जाती है। अब फंसने के बाद उस दल दल से निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही हम स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करें और इस नाम रूप की बीमारी से मुक्त रहें। ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए सदा इस बात पर हमें ध्यान देना है कि संगम युग में मुझे किसी भी व्यक्ति या वैभव पर प्रभावित होना नहीं है। कहते हैं आपके पास कोई व्यक्ति दो कारणों से आता है, प्रभाव से या अभाव से, है ना? प्रभावित होगा तो कोई ना कोई बात या विशेषता या गुण को लेने के लिए आएगा, या अभाव उसके पास कोई चीज का होगा, कोई बात का होगा, उसके लिए आपके पास आएगा। तो हमें ये ध्यान देना है, कोई आत्मा अगर मेरे तरफ आकर्षित होती है तो भी उसको होने नहीं देना है। एक बार प्रकाश मणि दादी जी के साथ हम हिस्ट्री हॉल में बैठे थे। दादी जी को एक प्रश्न पूछा, दादी जी आप हमारी अलौकिक मां हैं, इतने वर्षों से हमें इतना असीम प्यार दे रही हैं, अगर दादी से हमारा थोड़ा प्यार है, थोड़ी ममता है, तो ये सही है या गलत है? क्या जवाब दिया होगा भाई? हाँ, जो हमें इतनी पालना देता है उनके साथ असीम प्यार होना, ये तो नेचुरल बात है। लेकिन दादी की स्थिति बाप समान है। दादी से अगर हमारा थोड़ा मोह है, ममता है, उनको हम याद करते हैं तो उन्होंने अपनी बुद्धि अटकती नहीं है, उनके थ्रू कहां जाती है? बाबा की तरफ जाती है। तो ये सही है। अगर उन्होंने ही अटकती है तो वह गलत है। जवाब बहुत अच्छा दिया था दादी ने। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है, कोई भी व्यक्ति मुझ पर प्रभावित ना हो। दिखाई देता है, अगर प्रभावित होता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है उसका बुद्धियोग हमारे थ्रू या न्यारा होकर बाबा के तरफ डाइवर्ट कर देना, बाबा से जोड़ना। यह समझदारी है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को दो खजाने दिए हैं, अमूल्य खजाने दिए हैं। कौन से? समय का और संकल्पों का खजाना दिया है। ये दोनों खजाने अगर हम किसी व्यक्ति के पीछे लगाते हैं, खर्च करते हैं, तो हमारा योग का सब्जेक्ट कमजोर होता है, योग के रेस में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारा नंबर रेस में पीछे होने लगता है। इस रेस में हमें आगे बढ़ना है लेकिन हम पीछे हट रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा ध्यान देना है, किसी व्यक्ति के पीछे या वस्तु के पीछे हमारी बुद्धि न जाए। कई बार हम सोचते हैं कोई अच्छी चीज अपने पास रख ले, ऐसा सोचते हैं ना। तो अच्छी चीज अंत में हमें याद आ सकती है, इसलिए कोई भी अच्छा व्यक्ति या अच्छी चीज मेरे बुद्धि में न हो। अच्छी वस्तु है, बाबा कहते हैं अच्छी वस्तु मिलना ये आपके तपस्या का फल है, प्राप्ति है, उसको हमें यूज जरूर करना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है, उसमें हमारी बुद्धि लटके नहीं। इसलिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा हमें बताते हैं वैभव से न्यारा होने के लिए, कौन सी है जी? दीदी के दिन चल रहे हैं, दीदी का क्या स्लोगन था? अब घर जाना है। मुंह से यहां से घर वापस जाना है, ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाती है तो बुद्धि का लंगर हमारा यहां से उठने लगता है और इस ग्लोब में जो भी चीजें हैं उनसे बुद्धि हटने लगती है। मुझे यहां से जाना है, ये बात मुरली में सुनकर हम कईयों को सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब तक उसको दिल से स्वीकार नहीं करते हैं तब तक बुद्धि हमारी इससे डिटैच नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मासन करते रहो। स्थूल पद्मासन तो हम करते ही हैं सेहत को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन आत्मा समझकर पद्मासन भी करना है, कमल फूल समान स्थिति हमें अनुभव करना है। संसार में रहते हुए बाबा को हमें अपना संसार अनुभव करना है, इसको कहते हैं पद्मासन। तो गुप्त ही गुप्त अभ्यास हमारा ये चलता रहे तो ऑटोमेटिक हमारी कमाई होती जाएगी और भाग्य का सितारा हमारा चमकता जाएगा। तो उसके लिए हम लौकिक से भी न्यारे हो जाते हैं सहज, लेकिन अलौकिक जीवन में थोड़ा कभी देखते हैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा लगाव झुकाव कभी हो जाता है। कई आत्माओं के साथ हमारे कर्मिक अकाउंट है, क्योंकि हमने 83 जन्म का पार्ट बजाकर यहां बैठे हैं 84 में। तो जो हिसाब किताब अनेक आत्माओं के साथ हैं, हो सकता है वो हमें अपने तरफ खींचे, अपने तरफ प्रभावित करें, लेकिन हमें जब उसका सिग्नल मिलता है तो अलर्ट होकर न्यारा और प्यारा का बैलेंस रखना है, न्यारे रहना है और प्यारे भी रहना है। और सच्चा प्यार एक बाप के साथ करना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना है, ये तो हमारी शिक्षा है। किसी से हमारा द्वेष घृणा किसी के प्रति न हो, सबके साथ प्रेम प्यार की भावना हो, लेकिन आंतरिक प्यार, दिल का प्यार, जिगरी प्यार केवल एक बाप के साथ हो। इसमें ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं, एग्जाम्पल है, दादियां हमारी एग्जाम्पल हैं। हमें कोई नया रास्ता नहीं बनाना है, जो बाबा ने रास्ता बनाया हुआ है उस पर हमें केवल चलना है, उनको फॉलो करना है। देखो लौकिक यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना है, और यहां कॉपी करने के लिए बाबा प्रेरित करते हैं। भाई जी, इतना ही नहीं, जो बहुत अच्छी कॉपी करते हैं उनको गिफ्ट भी देते हैं। देखो भाई, ऐसी यूनिवर्सिटी हमारी है। ब्रह्मा बाबा को हमें कॉपी करना है तो उनके कदमों पर हमें कदम रखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो ये स्लोगन कभी भी हमें भूलना नहीं है, आकर्षित होने वाला आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता है, प्रभावित होने वाला प्रभावशाली नहीं बन सकता है। जो अधीन रहता है वो दूसरों को अधिकारी या स्वतंत्र नहीं बना सकता है। इसलिए हमें एकदम आजाद पंछी बनना है। स्वतंत्र माना क्या? स्वतंत्र, स्वयं के तन से भी न्यारे, तन के वाहन से भी न्यारे, परे, उसको कहते हैं सच्ची स्वतंत्रता। क्योंकि गुलामी हमने माया की बहुत सहन की, माया के जेल में बहुत रहे, अभी इस पराधीनता के जाल को भी हमें समाप्त कर देना है और बहुत अच्छी स्थिति को बनाना है। तो हमें बार बार चेक करना है, विश्व के ग्लोब पर बैठना है और चेक करना है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जहां बार बार मेरी बुद्धि जाती है। इसकी सूक्ष्म चेकिंग हमें करना है और चेकिंग के साथ चेंजिंग भी करना है। बुद्धि को वहां से हटाना है और बाबा के साथ जुटाने का पूरा प्रयास करना है। कोई संबंध खींचता है कोई बात नहीं, तो वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। और कोई वस्तु भी अगर हमें खींचती है तो हमें सतयुग की जो वस्तुएं हैं, महल हैं, जो भी बातें हैं उसको याद करते हैं, तो ये कली तमोप्रधान चीजों से बुद्धि ऑटोमेटिक हमारी हट जाती है, है ना? प्रभु को प्रभु क्यों कहते हैं भाई? हैं जी, परा भू, जो भू से परे रहता है, धरती से परे रहता है, तो धरती के आकर्षण से भी हमें परे रहना है और उस प्रभु के याद में सदा टिकना है। उसी में ही हमारा कल्याण है, उसी में ही हमारी सच्ची कमाई है। तो मधुबन में आप यहां आए हो, सारे विश्व के ग्लोब में मधुबन ये सबसे पावरफुल स्थान है। इस स्थान पर आकर बहुत सुंदर योग के गहन आप अनुभव कर सकते हैं। ये वरदान इस भूमि को बाबा ने दिया है, तो इस वरदानी भूमि का पूरा लाभ आपको लेना है और स्वयं को माला माल करना है, ठीक है ना? तो इसलिए आज का जो हमारा विषय है इस पर हमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना है और इस बीमारी से न्यारा होना है। हमें एक बात जरूर याद रखना है, कभी प्रभावित होते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उसको हम फैमिलियरिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक बात याद रखें, फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। फैमिलियरिटी का कीड़ा बहुत पीड़ा देता है, इसलिए इस संस्कार से हमें न्यारे रहना है, प्रभावित होके पराधीन नहीं होना है। एक बाबा को संसार बनाना है और उसी में सदा खोए रहना है और योगाभ्यास में हमें नंबर लेना है। इस रेस में हमें रनर के साथ विनर बनना है, ऐसा दृढ़ लक्ष्य रखना है, तो ऑटोमेटिक इस बात से हम न्यारे हो जाएंगे। ओम शांति।